दादाजी अपना पूरा परिवार देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं था कि कोई था जो बहुत जल्द इन खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए आ रहा था। वहीं अबीर सिंह राठौड़ भी अरमान सिंह हानिया की हल्दी के फंक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसकी खबर वो पहले ही अरमान सिंह हानिया तक भिजवा चुका था। अरमान को किसी की कोई परवाह नहीं थी। अरमान समझ चुका था कि अबीर वहां क्यों आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ उसे टॉन्ट करने के लिए आ रहा था। जिस तरह से प्रियंका और उसका नाम उछाला गया था, उसी रिगार्डिंग अबीर सिंह वहां आ रहा था। लेकिन अरमान ने सोच लिया था कि अब वो अपने दुश्मनों को जल्द से जल्द पूरी तरह से उखाड़कर बाहर फेंक देगा और जड़ से दुश्मनों को खत्म कर देगा, क्योंकि अब आस्था उसकी जिंदगी में है। इसीलिए अब वो कोई और दुश्मन अपने आसपास नहीं देखना चाहता था। जल्दी ही अबीर सिंह राठौड़ अपने पूरे काफिले के साथ एकदम तैयार होकर सिंघानिया मेंशन की ओर निकल चुका था और ऑलरेडी घड़ी के 5 मिनट बज चुके थे। पंडित जी भी आ चुके थे। शुभ मुहूर्त, सब कुछ तैयार था। प्रियंका की माँ सीमा जी और साथ ही साथ आस्था के मामा जी भी वहां आ गए थे। केवल यही दो बाहरी लोग वहां आए थे, बाकी किसी और रिश्तेदार को वहां बुलाया नहीं गया था और मीडिया को तो इस फंक्शन से कोसों दूर रखा गया था। और सभी एक साथ अलग अलग स्टेज पर जाकर अपने अपने जोड़े के साथ बैठ गए थे। वहीं प्रियंका अरमान और आस्था को एक साथ देखकर कुछ ज्यादा खास खुश नजर नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर आस्था को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो आस्था की जगह वहां खुद को देखना चाहती थी और मन ही मन में सोच रही थी कि एक गांव की गंवार लड़की की इतनी अच्छी किस्मत आखिरकार कैसे हो सकती है। बस एक बार वो हल्दी, क्योंकि प्रियंका ने जिस हल्दी में कुछ केमिकल मिलाया था उस हल्दी में उसने 3 छोटे छोटे लाल बिंदु बनाए थे, उसे किसी तरह से वो हल्दी सीधा आस्था को लगवानी थी। वहीं दादाजी को अभी भी सुमित के आने का इंतजार था, क्योंकि उन्होंने सुमित को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो राधिका को लेकर पार्टी में आए, और उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी ही उन्हें सुमित राधिका के साथ आता हुआ दिखाई दिया। राधिका ने भी येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, क्योंकि कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद वो इस तरह से बाहरी दुनिया में आई थी तो उसे एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था। जल्दी ही आकर रश्मि ने राधिका को गले से लगा लिया था और सभी ने राधिका का बहुत अच्छे से वेलकम किया था। हालांकि सुमित बीच बीच में बार बार घूर घूर कर राधिका को देख रहा था, क्योंकि राधिका के चेहरे की मुस्कुराहट उसे अंदर ही अंदर चुभ रही थी। वो राधिका को बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब दादाजी ने जो उसे फोर्स किया था तो उसके पास अब उसे वहां लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तब दादाजी ने सबके सामने सुमित और राधिका की शादी का भी ऐलान कर दिया था। राधिका ने जैसे ही ये सुना वो तो उछलने लगी। वो तो कब से न जाने सुमित से शादी करना चाहती थी। वहीं अरमान बड़े ही ध्यान से सुमित को देख रहा था। फिर उसकी नज़र आकाश पर गई और फिर टाइगर को देखा। ऑलमोस्ट उसके 3 सबसे करीबी लोगों की शादी होने वाली थी। एक समय था कि अरमान सिंघानिया को शादी, प्यार, मोहब्बत, इन सब नामों से इतनी ज़्यादा चिढ़ थी जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। लेकिन आज आस्था को देखने के बाद उसकी सारी चिढ़ खत्म हो चुकी थी। अब तो बस वो आस्था को अपने आसपास देखना चाहता था। वहीं सुमित की शादी की बात सुनकर नानी माँ काफ़ी खुश हो गई थीं कि चलो एक और बेटे की शादी हो रही है, और साथ ही साथ ध्रुव और आहान को देखकर बोलती हैं, अरे मैं तो कहती हूँ नालायकों, अगर तुम लोगों की पसंद में भी कोई लड़की हो तो फटाफट से ले आओ, एक ही साथ सबकी हल्दी का फंक्शन हो जाएगा। तभी दादाजी वहाँ आए और नानी माँ की ओर देख कर बोले, बहन जी इन सब चक्करों में हम एक बात तो भूल ही गए। तब नानी माँ हैरानी से दादाजी की ओर देख कर पूछती हैं, कौन सी बात भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? दादाजी ने कहा, अरे हमने नालायकों की एंगेजमेंट तो करी नहीं। ये सुनते ही नानी माँ पूरी तरह से चौंक कर बोली, अरे हाँ ये बात हमारे दिमाग से कैसे निकल गई, अचानक इतनी जल्दी जल्दी शादी डिसाइड हुई कि एंगेजमेंट का ख्याल तो दिमाग से ही निकल गया। तब दादाजी मुस्कुरा कर कहते हैं, डोंट वरी बहन जी, हम पहले ही सारा इंतजाम कर चुके हैं। हल्दी लगने से पहले सबकी एंगेजमेंट होगी, उसके बाद हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही दादाजी ने ये कहा सबके चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और जल्दी ही रौनक एक बड़ी सी थाली में अंगूठियां लेकर वहां मौजूद थी और सभी जोड़ों के हाथों में रिंग दे दी गई थी। और सुमित राधिका को बिल्कुल भी रिंग नहीं पहनना चाहता था, लेकिन दादाजी के चेहरे को वो देख चुका था तो मना करने का कोई चांस था ही नहीं, और जल्दी ही उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी और सभी पूरा गार्डन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्योंकि सिंघानिया मेंशन में इस वक्त केवल परिवार के लोग और कुछ नौकर ही थे, इसके अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। आहान और ध्रुव तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और आहान के तो आंखों में लगभग आंसू ही आ गए थे, और वो ध्रुव की ओर देखकर बोला, ध्रुव यार तेरा भी कुछ हो जाता और तेरी भी आज यहाँ सगाई होती तो कितना मजा आता ना। तब ध्रुव ने आहान को कोहनी मारते हुए बोला,
अपनी फालतू की बकवास बंद कर दूं, तो तेरी सगाई करवा दूं यहाँ उस फाइटर रौनक से। ध्रुव रौनक को फाइटर कहकर बुलाया करता था, क्योंकि रौनक जिस तरह से मारपीट करती थी उससे उसे एक कमांडर या फाइटर की ही वाइब आ रही थी, तो वो उसे फाइटर रौनक कहा करता था। दोनों हाथ जोड़कर आहान ध्रुव के सामने बोला, सॉरी सॉरी भाई, गलती हो गई, प्लीज आगे से ऐसा मजाक मत करना। ये कहकर वह अब रौनक की ओर देखने लगा। वहीं रौनक ने भी एक पल के लिए आहान को देखा, लेकिन फिर अपनी नजरें फेर ली थी और जल्दी ही अब अरमान ने आस्था को सबके सामने अंगूठी पहना दी थी। वहीं सीमा और प्रियंका दोनों माँ बेटी एक जगह खड़ी होकर ये सारा ड्रामा देख रही थी, और साथ ही साथ सीमा गुस्से से प्रियंका से कह रही थी, देखा तूने अपनी दादी को किस तरह से इन लोगों में घुल मिल गई है, ऐसा लग रहा है कि ये घर इसी बुढ़िया का है, और ये देखो हमारे साथ रहती है और हमारा घर भी किस चालाकी से बुढ़िया ने अपने नाम करा लिया है, कितनी चालबाज बुढ़िया कहीं नहीं देखी होगी, और तुझे शुरू से ही प्यार नहीं करती है जितना प्यार ये उसे आस्था को करती है। तभी प्रियंका गुस्से से अपनी माँ को देखकर पूछती है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि दादी माँ हमसे इतनी नफरत करती है, क्या अत्याचार किया है हमने दादी माँ पर। तब सीमा जी की आंखों के सामने एक मूवमेंट आ गया था जब आस्था के माता पिता को सीमा ने बड़ी ही बेइज्जती करके घर से निकाला था। इतना ही नहीं, अपनी ननद पर यानी आस्था की माँ पर उन्होंने दुनिया भर के अत्याचार किए थे, उस पर गलत इल्जाम भी लगाए थे, तो ये बात आज तक नानी माँ भूल नहीं पाई थी। एक यही रीजन था कि वो कभी भी अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रही थी और आस्था के साथ गाँव में रहने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे प्रियंका बड़ी होती गई, प्रियंका भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी थी, जिसकी वजह से नानी माँ कभी भी प्रियंका को वो स्थान नहीं दे पाई थी जो स्थान उन्होंने आस्था को दिया था। तभी प्रियंका ने अपनी माँ के कानों में कहा, अब क्या होगा, वो ड्रॉप जो मैंने उस कटोरे में मिलाई है उस कटोरे की पहचान भी मुझे पता है, लेकिन यहाँ तो दुल्हन और दूल्हे बढ़ते ही जा रहे हैं, अब एक और शादी, एक और दूल्हा तैयार हो गया है, अब ये कैसे होगा, लग रहा है कि ये लोग शादी कम और सामूहिक विवाह कार्यक्रम ज्यादा कर रहे हैं।
जिसका मन में आ रहा है एक किसी न किसी लड़की का हाथ पकड़कर आ रहा है और शादी कर रहा है, अब केवल ये दो ही बचे हैं और बाकी सबकी शादियां हो रही हैं। अब जैसे ही प्रियंका ने नफरत से ये कहा, सीमा उसे बोलने लगी, बस तू इन सब चीजों की फिक्र छोड़, तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आस्था पर होना चाहिए, तो कुछ न कुछ करके वो कटोरा जिसमें तूने वो ड्रॉप मिलाया है उसे आस्था तक भिजवा दे, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है। ऐसा बोलकर सीमा प्रियंका को गाइड करने लगी। वहीं अरमान आस्था को अंगूठी पहनाने के बाद कितनी ही देर तक उसके हाथ को पकड़े रहता है। इतना ही नहीं, सबके सामने उसने आस्था के खूबसूरत हाथों को अंगूठी पहनाने के बाद चूम लिया था और आस्था शर्मा गई थी। वेल, सभी ने अरमान के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने अपने पार्टनर को अंगूठी पहना दी थी। आज रौनक काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन, जिसे वह अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा मानती थी, यानी रश्मि की शादी होने वाली थी, और रश्मि की खुशियों के लिए वो बेहद दुआ कर रही थी कि उसकी खुशियां हमेशा बनी रहें, हो किसी को उसकी नज़र न लगे। जल्द ही सभी जोड़ों ने अपने अपने पार्टनर को अच्छा सा लुक दिया था, लेकिन सुमित सिर्फ और सिर्फ नफरत से राधिका को देख रहा था, क्योंकि राधिका से उसकी नफरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसने डिसाइड किया था कि अगर दादाजी चाहते हैं कि वो राधिका से शादी करे तो वो करेगा, और उसके बाद उसकी जिंदगी में दुख ही दुख भर देगा। कहीं न कहीं सुमित अलग ही लेवल का सोच रहा था। वो जल्द ही नानी माँ ने अपने हाथों से प्यारी प्यारी हल्दी के पेस्ट को सबके सामने रख दिए थे और सभी लड़कों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये हल्दी सबसे पहले वो अपनी अपनी दुल्हन को लगाएं। हालांकि हल्दी की रस्म में सबसे पहले भाभी अदा करती थी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अलग था। और मेरे दोस्तों, ये तो नाटक एक काल्पनिक कथा है, मतलब स्टोरी, और यहाँ सब कुछ चलेगा। आई होप आप लोग ज्यादा डीप में नहीं जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। तभी अरमान ध्यान से सभी कटोरे को देखने लगता है, और उसके बाद जैसे ही नानी माँ के कहने पर आकाश रश्मि को हल्दी लगाने के लिए और सुमित राधिका को, ठीक उसी वक्त अरमान ने उन्हें रोक दिया। वहीं प्रियंका अब डर गई थी कि अचानक से अरमान ने इस तरह से हल्दी लगाने से मना क्यों कर दिया। तब दादाजी अपने माथे पर सिलवट लाकर अरमान के पास आते हैं और फिक्रमंद होकर बोले, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से हल्दी क्यों नहीं लगने दे रहे हो, बताओ क्या बात है। तब अरमान ने राजेश को तेज आवाज में बुलाया। राजेश जल्दी ही वहां मौजूद था। अरमान ने राजेश से बोला कि जाओ जाकर सभी हल्दी अच्छे से चेक करो, क्योंकि अरमान ने जब हल्दी के सभी कटोरे देखे थे तब उसके दिमाग में कुछ खटकता है, क्योंकि अगर प्रियंका ने जिस हल्दी में केमिकल डाला था वो हल्दी थोड़ी सी काली पड़ गई थी। बाकी सारी हल्दी बेहद परफेक्ट थी, लेकिन एक हल्दी का इस तरह से काला पड़ना अरमान को कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए उसने राजेश को इंस्ट्रक्शन दी थी कि सबसे पहले वो हल्दी को चेक करे। वहीं प्रियंका का अब डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। अरमान जो शुरू से ही हर एक चीज को सोच समझ कर करता था, छोटी छोटी चीजों पर उसका बेहद ध्यान रहता था। जिसकी इतनी शार्प नजरें थी, भला इतनी बड़ी चीज पर उसका ध्यान कैसे नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, उसे हल्दी वाले कटोरे पर जो तीन बिंदु लगे हुए थे, जो कि प्रियंका ने हल्दी की पहचान के लिए लगाए थे ताकि वो हल्दी आस्था को लगे, ये भी उसकी नजरों में आ गए थे।
अब जैसे ही राजेश ने थोड़ी थोड़ी हर एक बाउल में से हल्दी लेकर अपने हाथ पर अप्लाई की तो उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। और तब दादाजी बोले, अरे बेटा, तो खामखा ही इस तरह की हरकतें कर रहा है, सब ठीक तो है, क्यों परेशान हो रहा है? और वैसे भी ये हल्दी शारदा बहन ने खुद अपने हाथों से बनाई है। तभी नानी माँ की नज़र अचानक ही प्रियंका पर चली गई थी और प्रियंका जिस तरह से खड़ी होकर डर रही थी, उसके माथे से पसीना निकल रहा था। साथ ही साथ वो अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। तब नानी माँ भी अचानक हैरान हो गई थी। और फिर इससे पहले कि दादाजी बाकी की हल्दी चेक करने से रोकते, नानी माँ गंभीरता से बोलती हैं, अरे नहीं नहीं भाई साहब, भले ही हल्दी मैंने अपने हाथों से बनाई हो, लेकिन दामाद जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और वैसे भी सेफ्टी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, तब राजेश ने जल्दी ही सारी हल्दी अच्छे से अपने हाथ पर अप्लाई कर ली। इन द लास्ट जो केमिकल वाली हल्दी भी जैसे ही उसने अपने हाथ पर लगाई, कुछ सेकंड्स बाद उसके हाथों में जलन लगना शुरू हो गई थी और अचानक से राजेश चीखने लगा। अब ये नज़ारा देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया था और सब हक्का बक्का होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। वहीं आहान और ध्रुव तो सबसे ज्यादा मायूस हो गए थे कि उनकी इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद, उनके इतने सारे सिक्योरिटी के बावजूद, भला इस तरह से हल्दी का फंक्शन कौन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। अब अरमान का पारा बेहद बढ़ चुका था।